నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యం కి హాత్ దేసే రే ఐ బార్ బార్ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధో జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తుతే సప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ విశుభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే హా దేవి కాకు భరగత గదయాజ్ఞవాచ జాచేని పత్తు దండవతోద్భటారతి ఆర్షా ప్రసాదమబుధస్య జనస్య దిత్వా గంధర్వికేతవ గణే గణనం అంగశ్యామలిం క్షటాభిరభితో మందే కృతేందీవరం జడ్డంజాగుడరోచి సాంవిదధతం పట్టంబరస్య శ్రియా బృందారణ్య నివాసినం సద్దామాభిరామోదరం రాధాస్కందనివేశితో జలభుజం ధ్యాయం భక్త్యా విహీనాపరాధలస్య స్థిత్తాస్తు కామాదికరణం కృపామయీ స్వామి శరణం ప్రపన్న వందే నమస్తే శరణారవిందం త్వయైవాశ్రమస్తుభగవాన్త్వయా వినాయకేరాధే తన్నయమామి శరణం. আমি দেখব কিরকম বলি, যদি একেবারে চোখে পর্যন্ত লেগে যায় কি হবে? কল হম লোকনে হো ভাগ্যম হো ভাগ্যম নন্দ গোপ বিজৌ কৃষাম জন্মিত্রম পরমানন্দম পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন এতে শ্লোকটি ব্যাখ্যা দিই। আজ ब्रह्मा जी के इसके बाद में ब्रह्मास्तव के दूसरे श्लोक को यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। ये शांत भाग्य महिमा अच्युत्ता व दास्ता एकादशय ही वयम बत भूरी भागा ये तद ऋषि चषकई अशक इवाम सवादयो अंग्रज मध्य मृताशवं से। ऐसा ऐशांत ऐशांत भाग्य महिमा अच्युत ताव दास्ता हे अच्युत, अभी जो मैंने कहा अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रयोग काम नंद के गोप में नंद गोप के इसमें या ब्रज में रहने वाले पशु पक्षी की पतंग मनुष्य चर अचर जो भी हैं इनकी भाग्य की महिमा को मैं क्या कहूँ। अहो भाग अहो भाग जन्मिश्रम जो पूर्ण ब्रह्म जिनके सनातन मित्र हैं अथवा पूर्ण सनातन ब्रह्म जिनके मित्र हैं इसलिए वो परम सौभाग्यवान हैं। उनकी तो बात ही क्या कहें, हम लोग भी धन्य हैं। इसलिए धन्य हैं ये शांत भाग्य महिता अच्युत तावदास्ता एकादशैव हि वयं वतभूरिभागा। अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं, मन के अधिष्ठाता चंद्र हैं। उसी तरह से जितने भी इंद्रिय हैं इनके अधिष्ठाता देवता लोग हैं। हम लोग ब्रजवासियों के इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उनके माध्यम से आपके नाम रूप गुण लीला परिसर इत्यादि में जो आप विलास करते हैं, हम लोग भी उनको प्याला बना लेते हैं। इंद्रियों को, किनके इंद्रियों को? ब्रजवासियों के इंद्रियों को प्याला बनाकर चषक कही और उसमें हम लोग रसास्वादन करते हैं। प्याले में जैसे अमृत भरा हो उसका आस्वादन किया जाता है, तो गोपियों के माध्यम से उनके इंद्रियों के माध्यम से हम लोग भी एकादश जो अधिष्ठात्री देवता हैं खूब जी भर करके पान करते हैं। इसलिए आज हम भी धन्य हैं। वो चस्का क्या है, प्याले में क्या चीज है? आपके चरणारविंद का मकरंद है। मकरंद माने लीला विलास इत्यादि। छक छक करके हम लोग पान करते हैं, इसलिए क्या ये हम लोगों का महत्व भाग्य नहीं है? महत्व भाग्य, हम लोग भी पान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रजवासियों की का महात्मा वर्णन करना किसी के लिए भी समर्थ नहीं, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि उनका ये सब महिमा वर्णन कर सकें। अवांग मन सो गोचर है, यहां तक कि उद्धव भी सम्यक रूप से वर्णन नहीं कर सके, नहीं कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि खुद में ही वर्णन नहीं कर सकता। बलदेव जी शास्त्र मुख है, वो भी नहीं वर्णन कर पाते। कृष्ण की महिमा का वर्णन बलदेव जी भी नहीं कर सकते हैं, फिर गोपियों की महिमा की तो बात क्या कहें। हम लोग भी ब्रजवासियों के संबंध से बड़े भाग्यवान, संबंध से ब्रज के पेड़ लता गुल्म किस लिए इतने सौभाग्यवान हैं? कृष्ण का संबंध है, उनके परिकरों का उससे संबंध है। मोर तो संसार में सर्वत्र है, कहां ये जो मोर नहीं है? किंतु ब्रज के जो मोर है वो धन्य है। गाय भी तो सर्वत्र है, तो उस तरह से गाय इन गायों के नाम से समता रखने के कारण भी वो भी है, मातृवत है। किंतु ब्रज की गोपियों का, ब्रज की गायों का जो महात्मा है भाई, और गायों का उतना महात्मा नहीं होगा। यहां तक कि ब्रह्मांड में रहने वाली सुरभि का भी उतना महात्मा नहीं है, तो और गायों की तो कोई बात ही क्या है। इसलिए आज ब्रजवासियों के संबंध से हम लोगों का भी भाग्य बहुत, हम लोग अपने को सौभाग्यवान समझते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कारण क्या है? एकादश इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय पांच और ज्ञान इंद्रिय पांच। चक्षु कर्ण नाशिका जिह्वा त्वचा पाक पाइप क्या बाक पानी पाक पाइप उबर, ये पांच, ये कर्मेंद्रिय और वो ज्ञान इंद्रिय और एक मन, ग्यारह। किंतु है तेरह, ये आगे बतलाए, मन बुद्धि और अहंकार, और ये दस, तेरह है। किंतु ग्यारह को ही लिया, इसका भी कारण ये दिखलाएंगे। रुद्र, चंद्र, इंद्र, कुबेर, वरुण, ये सब जितने भी हैं ये सब लोग इंद्रों के अधिष्ठाता है, किंतु इससे भी अधिक ये सभी लोगों को में से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के माध्यम से ये लोग अधिष्ठात्री बने हैं। मूल अधिष्ठात्री वही हैं। तो इतना दूर जाने की नहीं जरूरत है, किंतु ये समझने की जरूरत है। हाथ को इंद्रिय नहीं कहते, मरने के समय में हाथ, पैर, नाक ये सब कुछ नहीं जाएगा, स्थूल जो इंद्रियां हैं ये नहीं जाएगा। इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, जब तक इसमें हैं तब तक तो हाथ चलता है, कान सुनता है, आंख देखती है, ये सब होता है। अधिष्ठात्री देवता खत्म हो जाता है, ये लूला बन गया, क्या है, अपंग बन गया, हट जाते हैं वो। तो मूल में जब तक वो रहते हैं तब तक तो ये हाथ, पैर, नाक, कान, मुख, कान ये सब कुछ काम करते हैं, अब वो हटने के साथ ही सब खत्म हो जाता है। तो चंद्र इत्यादि देवता भी, हम लोग भी, ब्रह्मा इत्यादि सभी ये जो देवता हैं, हम अपने को बहुत सौभाग्यवान समझते हैं कि भगवान के आदेश के अनुसार में, उनके विधान के अनुसार में हम एक एक इंद्रियों में अधिष्ठित हैं जीवों के। तो गोपियों के इंद्रियों में भी हम लोग अधिष्ठित हैं, और कृष्ण के इस रूप को छक छक कर, उनके लीलाओं को, उनके बंसीवादन को, उनके विलास को, गोचारण को, जितनी भी लीलाएं हैं जो गोपियां देखती हैं, सुनती हैं, अनुभव करती हैं अपने इंद्रियों से, हम लोग भी उसका पान करते हैं। ये हम लोगों का अहोभाग्य है। ब्रजवासियों का अहंकार, बुद्धि, मन, ये तीन सूक्ष्म शरीर, और चक्षु, श्रोत्र, स्वर, रसना, नासा, पाक, पानी, पाद, ये इंद्रियों के अधिष्ठान पूर्वक हम लोग इंद्रियों को चष्टा अर्थात प्याला बनाकर आपके चरणारविंद के मकरंद को क्रम क्रम से हम दास्य, अध्यवसाय, संकल्प, रूप, दर्शन, कीर्तन, श्रवण आदि के द्वारा पान किया करते हैं। एक यह मकरंद कैसा है, मकरंद माने क्या, कमल के फूल होते हैं, उनसे मकरंद, पराग जैसा कुछ होता है, उसमें रस भी कुछ होता है, वही मधुमेह फूल कमल से मधुमक्खी इत्यादि उसको ले लेती है। वो जब मकरंद अधिक रूप में होता है तो उसमें से बह जाता है, बहता है उसमें से पानी जैसा रस का वो रूप, बहुत ही मीठा होता है। अव्यक्त रूप में भौरे या मक्खियां उनको बड़े सूक्ष्म रूप से निकालती हैं। वैसे ही कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं ये सब मकरंद हैं। यशोदा जी का वात्सल्य, सखाओं का सख्य और गोपियों का माधुर्य, ये सब रस है, मकरंद हैं। अमृत आसव उसको कहते हैं, आसव माने मदमत्त जो कर देता है, तो वो आसव, आसव माने ये मदिरा है, उस चस्के से पी लेने से इनका, कृष्ण का यह रस अमृत, आदमी मदमत्त हो जाता है, अथा तो संसारिक अब रस से कोई संबंध उसका नहीं रहता, वो पागल हो जाता है। लोग कहते हैं जगत के लिए सुखदेव को पागल, नित्यानंद प्रभु जी और दूसरे, उनको संसार का ये जो घृणित रस, हेय रस है, भाव है, जड़ानंद है, विषयानंद है, उनको एकदम रुचकर नहीं रहता, क्योंकि उसमें वो लग जाते हैं। हम लोग मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उस चीज को समझना चाहते हैं। प्रक्रिया ये नहीं है उस चीज को ग्रहण करने के लिए। प्रक्रिया क्या है ये, इसमें एक साइंस है, विज्ञान है, जिसको कहते हैं साधारणीकरण। साधारणीकरण माने क्या, साधारणीकरण करने से कभी जिसके भाव से हम साधारणीकरण करते हैं उनके भावों को लेना वैसा ही हो जाना, जिसको तादात्म्य कहते हैं उसको कहते हैं साधारणीकरण। साधक जब तक ये साधारणीकरण नहीं समझेगा तब तक ये राधानुगा भक्ति वाला जो भाव है, अनुगमन है, ये नहीं आएगा। ब्रह्मा जी ने ये साधारणीकरण किया, देवताओं ने साधारणीकरण किया। इस चीज को एक बात और समझो, गोपियां अपराधित तत्व हैं, सचिदानंद तत्व है, कृष्ण की कला माने कृष्ण ही जैसी हैं, कृष्ण ही शक्ति शक्ति मतोरभेद की दृष्टि से, कृष्ण ही विलास के लिए दो भागों में बटे हुए हैं, प्रकाशित हैं। वो राधा जी हैं, शक्ति अंतरंगा शक्ति पूर्ण स्वरूप शक्ति वो है। उन्हों की काय विवाह जितनी है ये है चार प्रकार की सखियां। कौन से उन चार प्रकार की सखी, सखी माने प्रिय सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और पांच प्रकार। चार बतलाया इसलिए कि उन दोनों को एक कर दिया, नित्य को और प्राण को, दोनों एक ही कैटेगरी में है, उनसे कुछ श्रेष्ठ है किंतु दोनों वही है, इसलिए चार ही लिए। अरे वो छोड़ दो, वो तो छोड़ पप्पा को भी सब अभी इसमें, उसको भी प्रिय नर्म सखी में वो चंद्रावली इत्यादि को भी ले लो, इसके बाद में पक्ष पक्ष वो और तटस्थ और तो वो पीछे होगा, इनमें से ही कुछ कुछ है सब। तो ये जो है उनकी काय भी हुए हैं, इनकी श्रीमती राधिका। और सखियां क्या हैं, राधा जी के आठ प्रकार के भाव, एक एक मूर्ति ललिता विशाखा इत्यादि। और जो गोपियों के जो विविध और प्रकार हैं वो सब इन्हीं के भाव हैं। जब कोई जी इस रस के प्रति के लिए लोभ उसको उत्पन्न होता है, शास्त्रों से सुन करके, रसिक वैष्णवों को सुन करके, इन लीलाओं को सुन करके, तो जैसे ब्रह्मा जी ने क्या वो किया, साधारण है, उनकी इंद्रियों में एकदम रम गए। ये लोग एक एक इंद्रियों में रमते हैं। और जो साधक जो है रागानुगा वो क्या करते हैं, समझते। तो ये गोपियां सभी सच्चिदानंदमयी हैं। और ब्रह्मा जी इत्यादि जो चंद्र और ये जो एकादश इंद्रिय वाले हैं उनके अधिष्ठाता है, ये तो जड़ है, तो ये कैसे उनके अधिष्ठात्री देवता होकर के कैसे चतुर्थ से पान करेंगे उनके इंद्रियों से। कहते हैं ये बात ठीक है, ये जड़ है और वे संपूर्ण रूप से सच्चिदानंदमयी कृष्ण की पराशक्ति के कायव्यूह या प्रकाश थे। इनकी वहां पर पहुंची नहीं है, न जत्र सूर्य भासतो, यहां पर सूर्य वहां पर भास नहीं है, और तारे और दूसरों की तो बात क्या है, तो वहां पर पहुंच नहीं सकते, तो फिर ये लोग कैसे जाएंगे। कहते हैं कि जैसे ब्रज में कात्यायनी देखी जाती है, उनको दुर्गा भी कहा गया है। वो दुर्गा स्वरूप शक्ति के प्रकाश थी, वो सच्चिदानंदमयी है, कृष्ण की लीला का विकास करने वाली है, उसकी व्यवस्था करने वाली है, और उन्हीं की छाया है इस जगत में। जो दुर्गा जो शंकर जी के साथ में रहती है, ये जल जगत में है, वहां पर उनका प्रकाश नहीं है। वहां पर सूर्य चंद्र जो कुछ दिखते हैं, वहां पर कृष्ण ही बने हुए हैं। वहां पर सभी सच्चिदानंद कृष्ण के प्रकाश को समझो, इसलिए वहां पर देवता भी हैं, वो सच्चिदानंद में है, वो कृष्ण के प्रकाश, ये नहीं है, ये उनके छाया है इस जगत में। इसलिए यहां पर उसके अभिमान से वो कह रहे हैं वहां की बात, किंतु असल में इन देवताओं का वहां पर प्रवेश नहीं है। वो सब देवता जैसे कि सदाशिव इस जगत में रुद्र इत्यादि जो रूप है उनकी छाया है। ये रुद्र का वहां प्रकाश, जब रुद्र और वो जब एक तत्व के रूप में कहे जाएंगे तब वो सदाशिव को समझना होगा। ऐसे यहां पर ये जो कर रहे हैं उस अभिमान से, इसलिए यहां पर साधारणीकरण किया, इंद्रियों में मिल करके एकदम तदात्म हो गए। वहां का जैसा है इस जगत में वैसे ही है, किंतु थोड़ा सा कुछ है, नरलीला का अनुरूप है ना, यदि उनको नहीं मानेंगे तब नरलीला वहां नहीं है। इसलिए पूर्व रूप में नर लीला के रूप में वहां पर वो चीजें हैं और उसी का ये जगत में छाया है, ऐसे समझ में तो लीला नरवत नहीं होगी। इसलिए वहां पर कृष्ण ही सब, जैसे कंस वो क्या चीज है, एक भावना मात्र है, अभिमान मात्र, अभिमन्यु वो कृष्ण ही का एक भाव समझ। इसी तरह से सब कुछ इस जगत में, इस जगत में उसकी अभिमान की मूर्ति होकर के वो त्रिगुणमयी हो जाती। साधारण किरण इस तरह से जैसे लोहे में अग्नि प्रवेश करके लोहे का काम करती है, साधारण करणी में एक विशेषता होती है, कभी एक होती है और कभी अलग रहती है। जब तक लोहे में आग है तब तक तो एक जैसा है, किंतु तभी एक नहीं है। गेहूं वो शक्ति निकल जाएगी, लोहा नहीं जलाएगा। इसलिए जब कभी तदात्म होता है और कभी कभी तदात्म से निकल करके वो साधारण सा रहता है। तो जीव जब राधानुगा भक्ति के प्रति लुप्त होता है, उसको लोभ होता है, तो भगवान की कृपा से वैसे व्यवस्था करके भगवान उसके इस भाव को पुष्ट करते हैं, पुष्ट करके उनको ऐसा ही संग हरि कथा इत्यादि देते। वो धीरे 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 तन्मय होकर के उस वस्तु की चिंता करते 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 वो साधारणीकरण वो कभी कभी एकदम हो जाता है और कभी कभी रोता यह है मैंने उनका कुछ अनुभव किया और इस समय नहीं हो रहा। जैसे महाप्रभु जी राधा भाव में एकदम निविष्ट होकर के लीला में एकदम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, रास हो रहा है, और इसके बाद में ये लोग ढूंढते 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 वहां पर पहुंचे जगन्नाथ वाटिका में, उनको उठाया जगाया होश कराया, जब होश आया तो रोने लगे, अरे मुझे कहाँ लाए, मैं रास में सम्मिलित होकर के उनकी सेवा कर रहा था, है तुम लोगों ने हमको यहाँ ले आए। अब वो छटपट करके के रो रहे, और उससे भी उपशम हो गया जब वो भाव भी, जब एकदम बाहरी स्थिति में आ गए, मैं कुछ कह रहा था, मैं रो तो नहीं रहा था, मैं क्या पगलपन कर रहा था, अंडबंड कुछ बोल रहा था या नहीं, प्रभु आप अंडबंड कैसे बोले, ये क्या हुआ बाह्य दृष्टि। अंतर्दृष्टि वाला जो भाव है वही तदात्म, वही साधारणीकरण है। साधक भजन करते करते इस चीज को जब लाएंगे तब ये राधानुगा भक्ति में वो सिद्ध देह इत्यादि के द्वारा होगा, उसके लिए बहुत ऊपर की जरूरत है। जब तक ऐसा अधिकार नहीं है तब तक कथाओं को सुनो, वैसा मत करो। वो भगवान की कृपा से नित्य सिद्ध देव उस अवस्था में आएगी जब भगवान अनुग्रह करके दे, है हमारे अंदर में ही, है हमारे अंदर, जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव नित्य कृष्ण का नित्य दास है। जैसे स्थूल शरीर में आंख नाक सुंदर, कान मुख होठ अंग हाथ पैर ये सब हैं, इंद्रियां हैं, ऐसे जीव के शुद्ध स्वरूप में भी बड़ी सुंदर रूप में वो सुगठित है, बहुत सुंदर। कृष्ण का नराकार जैसा रूप है, उनकी सेवा के लिए जीवों का भी ऐसा ही शुद्ध स्वरूप है, नित्य जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ये नहीं हो सकता। उसका अपना भाव है, अपने विचार हैं, उसमें संबित संधिनी और ह्लादिनी की वृत्ति उसमें प्रकाशित है, आंशिक रूप में सभी हैं, इसलिए जीव का शुद्ध स्वरूप में सभी कुछ है। किंतु जब तक कि हम चिन्मयता की उपलब्धि नहीं करेंगे अपने चित्त वस्तु की, तब तक ये चीजें ऐसे मालूम होगा कि हम लोग निराकार निर्विशेष हैं। जब देखो तो कुछ नहीं मालूम होगा, मालूम है ये न जाने क्या है नहीं है, एक हवा है निकल जाएगी बस खत्म। सोचो देखो, इन चीजों को समझने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने परामर्श दिया है, इनको अधिक मत पूछो। अधिक जिज्ञासा करने से नहीं होगा, तुम लाख चेष्टा करेगा, कोई लाख गुरु बतलाएगा भाई तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हरिनाम चिद अनुशीलन है, भगवान की कथाएं सुनना चिद अनुशीलन है, इसके सुनने से और हरिनाम निरंतर एकांत में वैष्णव के और गुरु के अनुगत्य में समस्त चिंताओं को छोड़कर और चिंतन करते 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 हरिनाम की कृपा, भगवान की कथाओं को ऐसे सुनते 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 अपने आप वो विकसित होगा, जैसा है वैसा ही विकसित होगा। किंतु विकसित कब होगा? स्वरूप शक्ति की लादनी वृत्ति का साथ जब संबित के साथ में मिलेगा और हृदय में उदित होगा तब होगा, यही कृपा सिद्धि है। साधन हम करेंगे, सुनेंगे, हरिनाम करेंगे, ये सब साधन तो हम करेंगे, किंतु ये वृत्ति आना यही कृपा सिद्धि है, चाहे वो भक्त की कृपा हो अथवा भगवान की कृपा हो। इसलिए भाव जो है वो अभी जो बतलाए वो कृपा सिद्धि है, भगवान की कृपा से हो, भगवान की कृपा से भक्त लोग कृपा करेंगे, और भक्त की कृपा, भगवान के भक्त हैं वो भगवान से प्रार्थना करेंगे वो देंगे, दोनों एक दूसरे पर आश्रित। भगवान की कृपा भक्तों के कृपा के अनुगामिनी है, जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान कृपा करना चाहेंगे तो उन भक्तों की कृपा के माध्यम से कृपा करें, स्वतंत्र रूप में नहीं करें। इसलिए साधन भजन ऐसा होना चाहिए साधारणीकरण, उनकी चित्त वृत्ति में अपने चित्त वृत्ति को मिला दी। एक आदमी, एक स्त्री है, उसका लड़का मर गया है या पति मर गया और रो रही है, लोगों की भीड़ हो जाती है, अधिकांश लोग उसका रोना सुन करके रोते हैं, किस लिए रोते हैं? साधारणीकरण हो जाता है, उनका चित्त वृत्ति उसके चित्त वृत्ति में ऐसा मिल करके घुल मिल जाता है कि वो जैसे रोती है ये भी रोने लगता है, अपने आप हो जाता है ऐसे। उसी प्रकार से हरि कथाओं को सुनने से हरि नाम उसी प्रकार से निरंतर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी रूप सनातन जी करते थे, ऐसे हरि नाम करते 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 तब ये चीज होगा, तब ये साधारणीकरण होगा। इस तरह से हम लोगों को भी ऐसे ही भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब यहां कह रहे हैं आसव अमृतासवम से मध्व मधु अमृत आसवम, आशा माने मदिरा। कृष्ण के का जो जो नाम रूप गुण लीला परिकर के साथ में विलास इत्यादि है उनके ये जो भाव है ये है आशा मदिरा। हम लोग उसका पान करते हैं एतादृश मधु, यदि पान करना चाहिए बार बार यदि कोई करना चाहे, प्रजवासी वर्गों के प्रत्येक इंद्रियों में अधिष्ठान करने से संघटित हो सकता है। क्या ऐसे प्रजवासियों का यदि कोई अनुगमन करे, ललिता जी राधा जी की कृष्ण की कैसे सेवा कर रही हैं, तंबुलार्पण साद मर्दन पयु दानाभिचार आदि भी वृंदारण्य महेश परिण सतपति तोषयंती जपया प्राण पे सखी किला गति किला असंकोचिता भूमिका केल भूमेश रूप मंजरी मुखा तद्दासिका संशय हम। संशय मैंने मैं उनका ये समानीकरण करता है, वो हमारे ऊपर में कृपा करें भाई, इतना उच्च भाव आने पर तभी आएगा, जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे वैसे हम करेंगे। वैसे भाई तो गुण होना चाहिए ना, हम लोग ऐसा थोड़ा सा करने जाएंगे जड़िए भाव आएगा और डूब करके मरे, इसलिए ऐसी स्थिति में नहीं। पहले ये सब मन शिक्षा उपदेशामृत के श्लोकों को अच्छी तरह से ठीक करके तब ही उपदेश। निरंतर हरि कथा सुनते सुनते वैसे हरि नाम करते 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 मन कहीं नहीं जाएगा ने? मन यदि चाहे कि वो काम करे तो उधर से फिर चलाएगा अपने आप। इसलिए हम प्रत्येक एक एक इंद्रियों के द्वारा आत्मसमर्पण आदि बहु प्रकार भक्ति मध्य एक एक प्रकार भक्ति लाभ करिया कृतार्थ। इन भक्तियों में से एक एक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अच्छा पाद सेवन किस इंद्रिय का कार्य है, पाद सेवनम पैरों का, इसके इंद्रिय अधिष्ठाता शायद विष्णु या कौन है। इस तरह से ये जो नौ बतला गया नौ प्रकार के, इसमें से बतलाएंगे आगे 1300 हैं मन बुद्धि अहंकार और बाकी ये 10, उसमें पायु और उपस्थ दो को छोड़ दिया, सति पेशाब इत्यादि का रास्ता दो को छोड़ दिया, बाकी सबको वो ये 9 और 2 वो 11, 9 दो 11 होगा न, 10 में से 2 गया 8, 8 और 3 वो 11, मन बुद्धि अहंकार और 5 इंद्रियों और कर्म इंद्रियों में से ये 2 निकाल दिया। इस तरह से जो समस्त इंद्रियों के द्वारा भक्ति किया करते हैं, अतः तो समस्त इंद्रियों के द्वारा कौन, गोपियां समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं। हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे जो कैसे करते हैं, हाथ पैर का तो आंख का तो समझ लेंगे, बाकी जो दो का कहा वो हम लोग नहीं समझेंगे जो कैसे वो सेवा करते हैं। तो जो 13 इंद्रियों से भगवान की जो सेवा करते हैं कृष्ण की, गोपियों की, राधा जी की, उनके भाग्य की महिमा क्या कहा, जब एक एक से कर करके हम लोग और वो भी साधारणीकरण करके तदात्म होकर के करते हैं तो इतना तो एक तो सबका क्या होगा। इसलिए ब्रजवासी के अतिरिक्त तो कोई भी धन्य नहीं है, हम जो धन्य है उनके माध्यम से ही धन्य है, हम लोग उनकी कथाएं सुना रहे हैं इसीलिए लोग सुनने के लिए लड़ाई, यदि यही ना करके संसार की बातें कहते तो कोई सुनने भी नहीं जाता। ये कथा कहीं उन्हीं की कथा की महिमा है। इस प्रकार से निरंतर मधुपान संघटित है और यदि ऐसा नहीं हो हमारा चित्त वृत्ति उसमें न लगे तो मधुपान हम लोग नहीं कर सकते, कृष्ण काली इत्यादि नहीं पा सकते। इसके द्वारा ब्रजवासियों के परम उत्कर्ष व्यंजित हुए, ब्रजवासियों जैसा और कोई नहीं है जिनका समस्त इंद्रिय और निरंतर सब समय उनका कृष्ण का ये रस का प्याला स्वयं वो लोग पीते हैं। यदि कहो पुरुषों का उपवास कृष्ण की सेवा में नहीं लगता, वहां की गोपियों का तो होता है, तथापि धृष्टता का परिहार करने के लिए ब्रह्मा जी ऐसा धृष्टता नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, कहते नहीं उस दोनों को ही बात दो, बात देने की बात नहीं, लोग नहीं समझ सकते इसलिए वो उसको नहीं कहना चाहते हैं धृष्टता। गोपियों के अतिरिक्त और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके समस्त 13 इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। यशोदा जी नहीं, नंद बाबा नहीं, किंतु ये लोग करते, इसलिए सबसे श्रेष्ठ महाभाग्यवान ये गोपियां हैं। यदि कहो रुक्मिणी सप्तभामा, ये भी नहीं, क्यों पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। इनको कहा जाता, एक को कहा जाता है साधारणी कुब्जा और दूसरी है समंजसा और तीसरी है समर्था, माने प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति जो है महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मादन, वहां तक गोपियों का प्रेम बढ़ जाता है, समर्थ है, प्रेम की अंतिम स्थिति तक पहुंचने में समर्थ है, इसलिए इनको कहते हैं समर्था। और समंजसा माने क्या? समंजसा माने होता है सच्चा, समाज के रीति के अनुसार, उससे धर्म के विपरीत न हो, वैदिक रीति से ठीक हो, इसलिए उसको कहता है समंजसा। सत्य जैसे विवाह हुआ, वैदिक रीति से विवाह करने में जो ठीक है उससे विपरीत कोई भी काम जिसमें नहीं होता है उसको कहते हैं समंजसा। और क्या? और एक असल भाव दूर है, समर्था की छाई को भी नहीं छुपाती, इसलिए समंजसा है। यह असमंजसा है, साधारणी भी असमंजसा है। असमंजसा साधारणी क्यों है? कुब्जार लोकसभा में जहां पर लोग जा रहे हैं और वो कृष्ण का पट ये लेकर के खींच रही है, और जब घर में ले गई तो उनसे अपने इंद्रियों की तृप्ति की बात कही, जो कि गोपियां और ये नहीं कर सकती, काम की बात थी। उन्होंने कहा अच्छा मैं लौट करके आऊंगा ना, लौट करके आते आते हरिदास ठाकुर के संग से जैसे उसकी रुचि बदल गई, बेचारी इनकी कथाओं को सुनने से इनके संग से उनकी भी वो जो जागतिक कामना है वो सब दूर हो जाएगी, तब फिर ऐसी चेष्टा नहीं रहेगी। जिनमें समर्था के भाव को छूने की भी समर्थ नहीं है उसको कहते हैं समंजसा, वो धर्म के भाव से डर से वहां तक नहीं पहुंचती। कहां तक? धर्म त्याग, धैर्य त्याग, लौकिक धर्म ये सब त्याग, ये सब नहीं कर सकती, उसे डरेंगी। और समर्था क्या? सब में समर्था है, वो सबको छोड़कर के त्याग करके कृष्ण से प्रेम की परावधि तक उनसे प्रेम करके कर कृष्ण को आनंद देगी, इसलिए वो समर्था है। यदि इन समर्था गोपियों के प्रति किसी का साधारणीकरण हो तब उनका जीवन सौभाग्य, ये समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करती हैं, दूसरों के लिए संभव पर नहीं है। आप कहते हैं कि गोपियां का तो पंच भौतिक नहीं है, उसका उदाहरण मैंने पहले बतलाया, नहीं होने पर भी वहां के जो देवता इत्यादि हैं सच्चिदानंद विग्रहसी वो ब्रह्मा, ये सच्चिदानंद वहां पर है, क्या करते हैं? थोड़ा सा दास का काम करते हैं, उन्हीं की छाया ये लोग हैं इस जगत में, ये लोग गोपियों के इंद्रियों के अभिशाप से देवता नहीं, वो लोग हैं, तो वो भी समझो जैसे वो कृष्ण की इच्छा से कृष्ण के प्रकाश हैं, वो कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, गोपियों के शरीर को स्पर्श कम कर सकता है कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं स्पर्श कर सकता, अतएव वैकुंठवासी सूर्य चंद्र आदि उनको ही ब्रजवासियों के संबंध में भूरी भाग्य समझो, यहाँ के वाले को नहीं, अभिमान के वजह से ऐसा कह रहे हैं। अभिमान की वजह से मैंने किया, दोनों को एक मिला करके जो मैं ही वो हूं ऐसा समझकर, किंतु ऐसी बात नहीं। ब्रजवासी, इसलिए ब्रजवासियों की ये महिमा होगी, जिनके इंद्रियों के स्पर्श से आज ये ब्रह्मा इत्यादि सौभाग्यवान है, तो उन गोपियों की महिमा क्या कहा जाए। ब्रह्मा कहते हैं जो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस विचार का यह दिग्दर्शन मात्र है। एक चीज को समझो, जैसे भगवान है वो कोटि कोटि रूप धारण कर, विशेष करके एक शक्ति में अधिष्ठित होकर के उनके कुछ अवतार होते, कुछ तटस्था शक्ति में से संबंधित होकर के कुछ कार्य होते हैं, और कुछ होते हैं माया शक्ति में अधिष्ठित होकर के अपने अवतार को प्रकाश करते हैं। माया शक्ति में अधिष्ठित होकर के ये तीन प्रकार के पुरुष हैं, इनसे इनका संबंध है। प्राणादिशायी विष्णु, शिरोदिशायी विष्णु और गर्भोदिशायी विष्णु, परमात्मा इत्यादि को सबसे उनके अंदर है, जगत संबंधी है, गौण इनके ही अवतार, जगत नहीं रहेगा ये भी नहीं रहेंगे। चित्त शक्ति में अधिष्ठित होकर के जो कृष्ण प्रकाशित होते हैं उन्हीं का नाम बलदेव प्रभु है। ये तटस्था शक्ति के मूल हैं बलदेव प्रभु, इनके बहुत से रूप हैं, इनका एक रूप शेष है, और अपने रूप में बलदेव प्रभु के रूप में मूल संकर्षण के रूप में अनंत कोटि जीवों के रूप में प्रकाशित होते हैं या उनको प्रकाश करते हैं। और यहां वैकुंठ में अपना जो स्वरूप है चीज शक्ति में अधिष्ठित होकर के जो नारायण इत्यादि हैं, नारायण बामन इत्यादि तद्रूप वैभव वाले हैं, उनकी सेवा के लिए भी मुक्त जीवों को प्रकाश करते हैं। इसके बाद में शेष रूप में जो तटस्था शक्ति से संबंधित जो है वो उससे ये अनंत कोटि जीव प्रकाशित होते हैं, जो कि बद्ध होकर के यहां से मुक्त होकर के जाते हैं। उनके बद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। एक चीज जब धर्म में बतलाया है उसको समझो, तत्व के रूप में जीव चाहे मुक्त हो चाहे बद्ध हो वो तटस्थ है, तटस्था शक्ति से प्रकाशित। उस समय में भी माया के अंदर जाने की माया भोग की भावना हो सकती है, इधर भी उधर भी, इसलिए वो तटस्थ हैं। किंतु जब वहां पर चले जाते हैं तो वो इस जगत में नहीं लौटते हैं ऐसा लिखा गया है। क्यों? मुक्त होने पर भी उनका तटस्थ भाव जरूर उनमें रहेगा, माया भोग करने की इच्छा रहेगी क्योंकि वाणी है। किंतु होता क्यों नहीं? उस समय चित्त शक्ति जो जोग माया है उनके शक्ति से सब समय वो भरे रहते हैं, इसलिए उनको आने की कोई संभावना नहीं। इस चीज को समझो, है ना? और यहां पर भी रिक्त है, इसलिए दोनों में से कोई एक आ सकती है, या तो माया शक्ति आ जाएगी नहीं तो चित्त शक्ति आएगी। इसलिए जब जला शक्ति की तरफ देखते हैं लपक करके वो माया इसके अंदर में आकर के इस जगत में घुमा दी, किंतु उस जगत में जाने से चित्त शक्ति का सब समय बल मिलने से वो कभी जब गत्ता न निवर्तनते चीजों को याद रखना चाहिए जो साधक है, जो भजन सचमुच में करना चाहते हैं। और
जिनकी